अपने जीवन में उसका अनुष्ठान किया, तब उसके भूख की निवृत्ति हुई। ये जानने मात्र से भूख निवृत्ति का उपाय भोजन है, ये जानने मात्र से जैसे भूख की निवृत्ति नहीं होती, तृप्ति की अनुभूति नहीं होती, उसके लिए भोजन करना पड़ता है। ऐसे यहां पर जो फल बताया जा रहा है, उस फल को प्राप्त करने के लिए, इस फल की प्राप्ति का जो साधन बताया गया, कर्म और उपासना का सह अनुष्ठान, साथ साथ अनुष्ठान, इस साधन को अपनाना पड़ेगा। और जिसने यह साधन अपना लिया है, जीवन भर कर लिया है, शास्त्र ने बताया हुआ जो कर्तव्य था, उसी कर्तव्य को जीवन भर कर लिया, शास्त्र जिस कर्तव्य के लिए, जो जिस कर्म को करने के लिए मना करता है, उसे छोड़ दिया। तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितों के अनुसार, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अपने बुद्धि से निर्धारित नहीं किया। शास्त्र से समझ लिया कि ये करने से और ये न करने से, इसको छोड़ना है और इसको अपनाना है, तो और उस वैसा ही कर लिया, तो उसके जीवन में, कहते हैं, ऐसे मनुष्य के जीवन में यह फल प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उसे क्या होता है, अविद्या मृत्युं तीर्त्वा। यहां पर मृत्यु शब्द का अर्थ है स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक चिंतन। ये जो मन है ये कभी शांत नहीं बैठता, वो कुछ न कुछ सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है। मन से चिंतन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो शास्त्र जैसा चिंतन करने के लिए बता रहा है वैसा चिंतन, उसे शास्त्रीय चिंतन कहा जाता है, और स्वाभाविक चिंतन कहा जाता है स्वभाव से होने वाला चिंतन। स्वभाव कहते हैं आपके संस्कार को, जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इस जन्म में अभिव्यक्त हुए हैं आपके अंतःकरण में, उन्हें स्वभाव कहा जाता है, अभिव्यक्त वासनाएं कहा जाता है। वासना, संस्कार, स्वभाव, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। और उन पूर्व संस्कारों के अनुसार जो चिंतन हो रहा है उसे कहा जाता है स्वाभाविक चिंतन। और पूर्व संस्कार यदि शास्त्रीय नहीं है, शास्त्र जैसा चिंतन करने के लिए बताता है वैसे चिंतन में प्रवृत्त करने वाले नहीं है, तो क्या होता है, फिर वह अशास्त्रीय चिंतन में ही मन को प्रवृत्त करते हैं। ऐसा अशास्त्रीय चिंतन स्वाभाविक चिंतन कहलाता है। ये भी यहां पर मृत्यु शब्द का अर्थ है स्वाभाविक चिंतन, शास्त्र निषिद्ध चिंतन। शास्त्र जिन विषयों का चिंतन करने के लिए मना कर रहा है वैसा चिंतन पूर्व संस्कार वैसे ही होने के कारण हो रहा है यदि, तो मृत्यु शब्द का अर्थ है यहां के। और शास्त्र जिन कर्मों को करने के लिए मना कर रहा है, शास्त्र निषिद्ध कर्म के संस्कार बुद्धि में है, तो वे संस्कार शरीर और इंद्रियों को वैसे ही कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं यदि अधर्म में, तो उन संस्कार मात्र से, अशास्त्रीय संस्कार मात्र से प्रेरित होकर के शरीर और इंद्रियों से जो कर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है मृत्यु। और ये स्वभाव ही मुख्य प्रेरक होता है, इसलिए भगवान भी कहते हैं कि प्रकृतिम यांतिक भूतानि, ये सभी प्रकृति शब्द का भी अर्थ, स्वभाव शब्द का भी अर्थ संस्कार है। सारे प्राणी जो हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त हो रहे हैं, निग्रह किम करिष्यति। लेकिन ऐसे स्वभाव को भी जो महत्व न दे करके अपने संस्कारों को, बुरे संस्कारों को अपना प्रेरक न बना करके सावधानी से जो मनुष्य अपने परम हितैषी शास्त्र को ही अपना प्रेरक बनाता है, तो दो प्रेरक हैं, दो से प्रेरित होकर के मनुष्य कोई भी कार्य करने में प्रवृत्त होता है। एक अपना स्वभाव है जिसे वासना भी कहा जाता है और दूसरा शास्त्र है। और स्वभाव है आपका हित नहीं चाहता, शास्त्र आपका हितैषी है। स्वभाव आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र में ही बनाए रखना चाहता है, शास्त्र आपको जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाना चाहता है, आपका हितैषी है। तो जिस मनुष्य ने इन दो प्रेरकों को अच्छी तरह से समझ लिया, स्वभाव और शास्त्र, और इनमें से स्वभाव को वो प्रेरक तो बनेगा ही बुद्धि में ही होने से, लेकिन उसकी बात न मान करके शास्त्र जो कह रहा है उसी की बात को महत्व दिया और शास्त्र से ही प्रेरित होकर के सारे जीवन अपनी शरीर इंद्रियों की प्रवृत्ति को और मन की प्रवृत्ति को संपन्न किया है। ऐसा मनुष्य क्या कर लेता है तो कहते हैं अविद्या मृत्युं तीर्त्वा। यहां अविद्या शब्द का अर्थ है शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र से प्रेरित होकर के जीवन भर किए हुए आपके द्वारा जो कर्म है जिसे धर्म कहा जाता है, इस धर्म से क्या हो जाता है, कहते हैं मृत्युं तीर्त्वा। जो पूर्व जन्मों में अनुष्ठित स्वाभाविक कर्म और चिंतन है, उस चिंतन रूपी मृत्यु को, स्वाभाविक कर्म रूपी मृत्यु को तीर्त्वा यानी पार करके, धर्मेण पापम अपनुदति ये शास्त्र कहता है। मनुष्य अपने शास्त्र ने बताए हुए कर्तव्य का अनुष्ठान कर लेता है और उस अनुष्ठित धर्म से क्या हो जाता है, पहले जन्मों में जो पाप हुआ है जिसे यहां पर मृत्यु शब्द से कहा जा रहा है और उसको अपनुदति उसे हटा देता है, उसे हटाना ही, उसे निवृत्त करना ही, और उसकी निवृत्ति का अर्थ है पहले आपसे हुआ लेकिन उसका फल आपको भोगना न पड़े, उसका आपके द्वारा किए गए कर्म का फल आपको भोगना न पड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको आपके पास से हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटेगा तो वो हटता है धर्म से, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म से पाप की निवृत्ति होती है। वो कैसे निवृत्ति होती है तो धर्म ये नियम होता है कि आप जैसा करोगे तो उस कर्म से दो बातें आपके अंतकरण में बनती हैं। एक को शास्त्र ने बताया हुआ कर्म आपने किया उससे एक अदृष्ट बना पुण्यात्मक, और एक संस्कार बनता है आपको वैसा ही कर्म करने का। बार बार कोई कर्म करते रहो तो वैसी ही आदत बन जाती है, स्वभाव बन जाता है, स्वभाव का ही नाम संस्कार है। तो ऐसे आप दीर्घ काल तक निरंतर शास्त्र ने बताए हुए ही कर्म को करते रहे तो उससे धर्म का आपके अंदर शुभ संस्कार पड़ा, और दूसरा एक अंश हुआ पुण्य। और ये नियम होता है कि जैसे अंधकार अपने निवर्तक अपने विरोधी प्रकाश से निवृत्त होता है, ऐसे पुण्य रूपी, पुण्य है पाप का विरोधी, पाप का निवर्तक। तो पहला वाला जो पाप था वह निवृत्त हुआ पुण्य से, अभी किए हुए धर्म से उत्पन्न हुए पुण्य से, और जो आपको प्रेरित करने वाला कुसंस्कार था वह कुसंस्कार अभी किए हुए धर्म के द्वारा उत्पन्न हुए संस्कार से, वो शुभ संस्कार है, धर्म का संस्कार है, अधर्म का संस्कार उससे निवृत्त हो जाएगा। इन शुभ संस्कार और अशुभ संस्कार इनमें निवर्त्य निवर्तक भाव संबंध है, परस्पर विरोधी है। तो शास्त्र विहित कर्म ही करते रहे, शास्त्र को अपना प्रेरक बना करके उससे शुभ संस्कार बना, उस शुभ संस्कार ने आपको अशुभ कार्य में प्रवृत्त करने वाले आपके अशुभ संस्कार को निवृत्त कर दिया, और जो पूर्व पहले से बना हुआ पाप था उसे धर्मेण पापम अपनुदति के अनुसार पुण्य ने निवृत्त कर दिया। ये बात यहाँ पर अविद्या मृत्युं तीर्त्वा ये तीसरे पाद में बताई गई ग्यारहवें मंत्र के। तो आपने किए हुए कर्म से तो ये बात हुई, इस प्रकार वो मल की निवृत्ति हुई। जो पाप है, जब तक रहेगा पाप तभी तक जगत के प्रति मन में आकर्षण रहता है, और जब तक अशुभ संस्कार है तभी तक जगत के प्रति आकर्षण रहता है। ये दोनों भी मन को जगत के प्रति आकर्षित कराने वाले जो थे मन में से निवृत्त हो गए, किससे? अविद्या से। अविद्या का अर्थ है शास्त्र विहित कर्म, जो आपने किया आपके द्वारा अनुष्ठित धर्म से ये निवृत्त हो गए। अभी एक साधन आपका बचा हुआ है, वो है उपासना। उपासना क्या करेगी? तो उपासना से कहते हैं विद्या अमृतम अश्नुते, जो आपके द्वारा कर्म के साथ साथ अनुष्ठित विद्या है, उपासना है, यानी शास्त्र ने आपको जैसा चिंतन करने के लिए बताया वैसा ही आपने चिंतन किया, जिस चिंतन से बचने के लिए आपको शास्त्र ने कहा उस चिंतन से आप बचे शास्त्र को प्रेरक बना करके, तो वो होगी आपकी उपासना। और आपके द्वारा अनुष्ठित उपासना क्या करती है? तो कहते हैं आपको अमृतत्व की प्राप्ति कराती है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से यानी आप अनुष्ठित उपासना से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है मनुष्य। यह अमृतत्व है एक प्रकार से वेदांत प्रक्रिया के अनुसार, ये जो सारा संसार है, ब्रह्मांड है, इसके अध्यक्ष हैं हिरण्यगर्भ, जिनको ब्रह्मा भी कहा जाता है, कार्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, और उनकी आयु जब समाप्त होती है तो ये सारा संसार फिर प्रकृति में लीन हो जाता है। उनकी आयु है जब से सृष्टि बनी तब से लेकर के सृष्टि का प्राकृत लय होने तक की, उनके 100 वर्ष की आयु को कहा जाता है एक महाकल्प। और यहां अमृत शब्द का अर्थ है वे ही हिरण्यगर्भ, कार्य ब्रह्म, और अमृतम अश्नुते का अर्थ है कि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति उसे हो जाती है, हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति हो जाती है। उपासना क्या करती है? हिरण्यगर्भ का जीवन भर चिंतन किया, तो उपासक का जब शरीर शांत होगा तो यहां से वो निकलेगा मनुष्य शरीर से, और आगे बताया जाएगा उत्तरायण मार्ग से, शरीर छोड़ते समय तो उत्तरायण मार्ग में वही जाता है जिसके प्राण सुषुम्ना नाड़ी से निकलते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी से उसका सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा निकलेगा और फिर वो उत्तरायण मार्ग से हिरण्यगर्भ लोक में जाएगा। वहां पर हिरण्यगर्भ लोक में जाने के बाद भी, ब्रह्म लोक में जाने के बाद भी, लोकांतःपाती मुक्ति चार प्रकार की है, एक सलोकता, दूसरी समीपता, दूसरी और ये तीसरी स्वरूपता, और चौथी है सायुज्य। तो ये जो यहां अमृत शब्द से लेना है, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मलोक के जो अधिष्ठाता कार्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ उनसे अलग रहता है ऐसा नहीं, उस लोक का नागरिक मात्र बनेगा ऐसा नहीं, अपितु उस हिरण्यगर्भ का जो शरीर है, हिरण्यगर्भ की जो इंद्रिया है, कार्यक्रम संघात है, उसी कार्यक्रम संघात को वो प्राप्त कर लेगा। सायुज्य का अर्थ ही होता है कि उपास्य की जो उपाधि है उसी उपाधि को मैं के रूप में पकड़ना, ये सायुज्य है। तो यहां पर हिरण्यगर्भ की जिसने उपासना की वह कर्म समुच्चय अनुष्ठाई क्या कर लेता है कि मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद में हिरण्यगर्भ का जो शरीर है, हिरण्यगर्भ की जो इंद्रियां हैं, उन्हीं इंद्रियों में उसकी अहंता स्थित हो जाती है। जैसे वर्तमान में जो शरीर आपको उपलब्ध है उसी शरीर को आप मैं के रूप में समझते हैं, निश्चित कर रखे और वैसा ही व्यवहार करते हैं। जिस शरीर में आपकी अहंता है उस शरीर में होने वाले सुख दुखों से आप अपने आप को सुखी दुखी अनुभव करते हैं। वैसे सायुज्य प्राप्ति का अर्थ है कि आपने जीवन भर जिस इष्ट देव का चिंतन किया उस इष्ट देव का जो शरीर है, उस इष्ट देव की जो इंद्रियां हैं, उन्हीं इंद्रियों से उसी शरीर से आपको होने वाले सुख दुख की अनुभूति होना, उसी को मैं के रूप में पकड़ना। आपकी अहंता यहां से निकलेगी तो बाकी 84 लाख प्रकार के शरीरों में से और किसी को प्राप्त नहीं करेगी, अपितु जो हिरण्यगर्भ है सारे ब्रह्मांड के अध्यक्ष, ईश्वर की प्रथम संतान जिनको कहा जाता है, उन्हें उनके कार्यक्रम संघात को आपकी अहंता मय के रूप में पकड़ेगी, उनसे अलग कोई आपका स्वतंत्र शरीर नहीं रहेगा। तो उनको जो सुख की अनुभूति होनी है उसी सुख की अनुभूति आपको होगी, उस शरीर में जो जो भोग होना है उस भोग के भोक्ता आप बनेंगे। इसकी प्राप्ति होना, सायुज्य भाव की प्राप्ति होना हिरण्यगर्भ के, उसे यहां पर अमृतम अश्नुते शब्द से कहा जा रहा है। ये किसको होता है, कहते हैं जो आपका शास्त्र ने बताया हुआ कर्तव्य है, कर्म तथा मन से कर्तव्य जो बताया गई उपासना, ये दोनों साथ साथ अनुष्ठान जो करता है। केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले तो जाएंगे पितृलोक में, सकाम भाव से करते हैं तो, केवल उपासना का अनुष्ठान करते हैं सकाम भाव से तो ब्रह्मलोक में तो जाएंगे, लेकिन वहां की सलोकता नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, या वो हिरण्यगर्भ के समीपवर्ती कोई बन करके रहेंगे, सामीप्य प्राप्त कर लेंगे, हिरण्यगर्भ नहीं बनेंगे। और कर्म और उपासना ये सह समुच्चय होता है, यदि साथ साथ अनुष्ठान कर लेता है तो उससे स्वाभाविक कर्म एवं चिंतन रूपी मृत्यु का कर्म से अतिक्रमण करके फिर हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति, सायुज्य की प्राप्ति रूप अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। और जिसको सायुज्य प्राप्त हुआ उसको फिर क्रम मुक्ति होती है। जो ब्रह्मलोक के नागरिक बने हैं, ब्रह्मलोक के भोगों को भोगने की कामना से केवल उपासना करके गए हैं, तो उनकी ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के बाद में मुक्ति होगी ही, मोक्ष उनको होगा ही, ये निश्चित नहीं है। लेकिन जिनको सायुज्य की प्राप्ति होती है उनको निश्चित ही ब्रह्मा जी का जब शरीर शांत होगा जिसमें इनकी अहंता है, तो ब्रह्मा जी तो ज्ञानी है, ब्रह्म विद्या के आचार्य परंपराओं में ब्रह्म विद्या की आचार्य परंपरा शुरू होती है नारायण से, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, उसमें द्वितीय आचार्य हैं पद्मभव शब्द से, यानी हिरण्यगर्भ को कहा जा रहा है। भगवान ने वेदों का सर्वप्रथम उपदेश हिरण्यगर्भ को ही किया है, यौवे ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यौवे वेदांश प्रणोति तस्मय के अनुसार, वो ब्रह्म विद्या के आचार्य परंपरा में दूसरे आचार्य हैं और उनको तो जीवन मुक्ति है, उनको तो अपरोक्ष अनुभूति हिरण्यगर्भ को होने कारण वो तो जीवन मुक्त है, लेकिन जब तक उनका प्रारब्ध है, जब तक ये कल्प है तब तक का उनका प्रारब्ध है, और जीवन मुक्त का भी जब तक प्रारब्ध होता है तब तक शरीर रहता है, तो उनका भी शरीर इस महाकल्प के समाप्ति तक रहेगा, प्रलय तक रहेगा, और बाद में तो फिर न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्र व समोन्नयन्ते के अनुसार विधेय मुक्ति होनी है उनकी। तो उनके साथ ही साथ ये जो विधेय उनका सायुज्य प्राप्त हुआ है जिनको, उनकी भी विधेय मुक्ति होती है। इस प्रकार ये कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान ये क्या हुआ, क्रम मुक्ति का साधन हुआ। और वेद चाहता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो वहां ब्रह्मलोक भी न जाना पड़े, सीधे यहीं पर मनुष्य जीवन में रहते रहते निर्विशेष ब्रह्म का, ज्ञेय ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव हो जाए, यदि अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो जाए, तो जब तक ये आपके मनुष्य शरीर का प्रारब्ध है तब तक इस शरीर में रह करके यहीं से मुक्त हो जाए, सीधे विधेय कैवल्य को प्राप्त कर ले। ऐसा जिसके जीवन में हो गया उसे तो सद्यो मुक्ति प्राप्त हो गई। इस शरीर को छोड़ने के बाद में आपको न तो इस लोक में वापस आना पड़े, न स्वर्ग में जाना पड़े, न ब्रह्मलोक जाना पड़े, कहीं पर भी आना जाना न पड़े, सीधे मनुष्य शरीर से, शरीर के छूटने के बाद आप अपने वास्तविक ब्रह्म भाव में स्थित हो जाए, स्वरूप अवस्थित हो जाए, उसे तो विधेय मुक्ति कहा जाता है, वो सद्यो मुक्ति हुई। वो तो होती है जो ईशावास्य उपनिषद के पूर्व में बताए गए मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित स्वरूप का आत्म रूप से अनुभव जिसको हुआ है उनको। और लेकिन ये नहीं हो पाया तो कम से कम इस शरीर के छूटने के बाद में और एक शरीर मात्र ग्रहण करना पड़े, और सब शरीरों में सर्वोत्कृष्ट शरीर है हिरण्यगर्भ का शरीर। संसार में यदि उत्कृष्टतम शरीर किसी का है तो है हिरण्यगर्भ का शरीर, ईश्वर की साक्षात संतान है हिरण्यगर्भ। और वो जो सर्वोत्कृष्ट शरीर है, यदि शरीर धारण करना ही पड़े, शरीर धारण करना न करना तो सर्वोत्कृष्ट है, और यदि शरीर धारण करना ही पड़े तो ऐसा शरीर हो जो सर्वोत्कृष्ट हो, तो सर्वोत्कृष्ट शरीर है हिरण्यगर्भ का शरीर। और उसकी प्राप्ति ये कर्म और उपासना का समुच्चय अनुष्ठान यदि कोई करता है तो मनुष्य शरीर छूटा समुच्चय अनुष्ठाई का, और सीधे हिरण्यगर्भ के ही शरीर में जाकर के उसकी अहंता स्थित हो गई। तो उस शरीर में जिसको सायुज्य प्राप्त हुआ उसकी फिर विधेय मुक्ति होनी ही है। इस प्रकार एक शरीर के बाद में फिर विधेय मुक्ति को प्राप्त करते हैं यदि कोई, तो उन्हें कहा जाता है क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति तो है, एक शरीर छूटा तो तुरंत फिर विधेय मुक्ति ही प्राप्त हुई, सद्यो मुक्ति हुई, और क्रम मुक्ति हो रही है। एक ये साधक शरीर छूटा, बीच में हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति हुई, और उस हिरण्यगर्भ के शरीर के छूटने के बाद में विधेय कैवल्य को प्राप्त हुआ। इसका उपाय है, इस मंत्र ने बताया, कर्म और उपासना का सह अनुष्ठान निष्काम भाव से करता है उपासक। तो अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते, इस प्रकार ये कर्म और उपासना का समुच्चय अनुष्ठान क्रम मुक्ति फलक है, इसका वर्णन यहां पर हुआ। अब उपासनाओं में भी कई प्रकार की उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं में भी कुछ कुछ उपासनाओं का सह समुच्चय हो जाता है। उसे यहाँ पर आगे वाले तीन मंत्रों से वेद बता रहा है और उसका विचार हम लोग करते हैं कल। कार्य ब्रह्म की उपासना और कारण ब्रह्म की उपासना साथ साथ करता है यदि कोई उपासक, तो उसका क्या फल होता है उस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 21 नवंबर बुधवार, देव दिवाली और तुलसी विवाह कार्तिक शुद्धि एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी है।